अध्याय 15 पद विज्ञान। उच्चारण की दृष्टि से भाषा की लघुतम इकाई ध्वनि है और सार्थकता की दृष्टि से शब्द। ध्वनि सार्थक हो ही या आवश्यक नहीं, जैसे अ क च ट त प आदि ध्वनियां तो हैं किंतु सार्थक नहीं। किंतु अब कब चल टल तल पल आदि शब्द हैं क्योंकि इनमें सार्थकता है, अर्थात अर्थ देने की क्षमता है। पद विज्ञान में पदों के रूप और निर्माण का विवेचन होता है। सार्थक हो जाने से इस शब्द में प्रयोग योग्यता नहीं आ जाती। कोश में हजारों हजार शब्द रहते हैं पर उसी रूप में उनका प्रयोग शब्द में नहीं होता, उनमें कुछ परिवर्तन करना होता है। उदाहरणार्थ कोश में पढ़ना शब्द मिलता है और वह सार्थक भी है, किंतु प्रयोग के लिए पढ़ना रूप ही पर्याप्त नहीं है, साथ ही उसका अर्थ भी स्पष्ट नहीं होता। पढ़ना के अनेक अर्थ हो सकते हैं, जैसे पढ़ता है, पढ़ रहा होगा, पढ़ा, पढ़ता, पढ़ता था, पढ़ा है, पढ़ा था, पढ़ा होगा, पढ़ेगा, पढ़ो, पढ़, पढ़कर, पढ़ने को आदि। पढ़ना के ये अनेक रूप जिस प्रक्रिया से सिद्ध होते हैं उसी का अध्ययन पद विज्ञान का विषय है। इसी तरह मैं का प्रयोग करना हो तो उसके भी अनेक रूप हो जाते हैं, मैं, मुझको, मुझमें आदि। इसलिए संस्कृत के व्याकरणों ने शब्द के दो भेद किए हैं, शब्द और पद। शब्द से उनका तात्पर्य विभक्तिहीन शब्द से है जिसे प्रतिपदिक भी कहते हैं। पद शब्द का प्रयोग ऐसे शब्द के लिए किया जाता है जिसमें विभक्ति लगी हो, तात्पर्य की शब्द विभक्ति रहित, पद विभक्ति सहित। इस प्रकार शब्द और पद का भेदक तत्व विभक्ति है। जैसा पहले बताया जा चुका है, विभक्ति का अर्थ ही है विभाजन करने वाला या बांटने वाला तत्व, अर्थात जिसकी सहायता से शब्दों का अर्थ विभक्त हो जाए। विभक्ति की सहायता से ही मुझको, मुझसे और मुझमें के अर्थ परस्पर भिन्न हो जाते हैं। यह भिन्नता विभक्ति के कारण है, अन्यथा मूल रूप मुझ सर्वत्र एक ही है। यदि विभक्ति न रहे तो समझना कठिन होगा कि वक्ता मुझ को लेकर क्या कहना चाहता है। तात्पर्य की विभक्तियों के योग से ही शब्दों में प्रयोग योग्यता आती है, अर्थात उनमें परस्पर अन्वय हो सकता है। अन्वय न होने पर सार्थकता अधूरी रह जाएगी। जैसे निम्नलिखित शब्द सार्थक हैं: उच्चारण दृष्टि, ध्वनि, भाषा लघुतम इकाई अध्ययन आवश्यक होना। इनमें कोई भी शब्द निरर्थक नहीं है, किंतु फिर भी अभिप्राय स्पष्ट नहीं हो रहा। यदि इन्हीं शब्दों में विभक्तियां लग जाएं तो अर्थ की अस्पष्टता दूर हो जाएगी। जैसे उच्चारण की दृष्टि से ध्वनि का, जो भाषा की लघुतम इकाई है, अध्ययन आवश्यक है। इस वाक्य में या यूं कहें कि पदों के अन्वित प्रयोग में संदेह का अवकाश नहीं रह जाता। इसीलिए ऊपर कहा गया है कि प्रयोग योग्यता पदों में, अर्थात विभक्ति युक्त शब्दों में ही रहती है। पाणिनि ने सुप्तिणंगण पदम सूत्र के द्वारा यह बात स्पष्ट की। सुप संज्ञा विभक्ति और तिंग क्रिया विभक्ति के प्रयोग से ही पद बनते हैं, बिना पद बने उनका प्रयोग नहीं हो सकता। पद रचना की अनेक प्रक्रियाएं हैं जिनकी थोड़ी चर्चा भाषाओं के वर्गीकरण के प्रसंग में हो चुकी है। पद रचना के लिए मुख्यतः प्रकृति और प्रत्यय की आवश्यकता होती है। प्रकृति प्रत्यय के योग से निष्पन्न शब्दों के आरंभ में उपसर्ग और अंत में विभक्ति जोड़कर अर्थभेद किया जाता है। दूसरे शब्दों में इसको ऐसे भी कह सकते हैं कि अर्थ तत्व में रचना तत्व के योग से पद की निष्पत्ति होती है। योगात्मक भाषाओं में भी सर्वत्र रचना तत्व हो ही यह आवश्यक नहीं है, कहीं कहीं उसका अभाव भी देखा जाता है, जैसे अव्यय में। वस्तुतः किसी भी भाषा में पद रचना की एक पद्धति नहीं चलती। संस्कृत श्रेष्ठ योगात्मक भाषा है, किंतु उसमें भी पद रचना की चार पद्धतियां दृष्टिगोचर होती हैं। पहला, अयोगात्मक। बहुत सारे पद बिना विभक्ति योग के ही दिखाई पड़ते हैं। नदी, भूवृत्र, वार आदि संज्ञारूप, पट, वद, हस आदि क्रियारूप। दूसरा, अश्लिष्ट योगात्मक। जनता, प्रभुता, उदारता, मधुरता। तीसरा, श्रेष्ठ योगात्मक। दैव, कौमार, नैतिक, भौतिक। चौथा प्रश्लिष्ट योगात्मक पिपटी सति, जो कहने को एक शब्द है किंतु अर्थ की दृष्टि से पूरा वाक्य है। पिपटी सति का अर्थ है वह पढ़ना चाहता है। जो स्थिति संस्कृत की है वही अल्पाधिक भाषा में सभी भाषाओं की है। अंग्रेजी और हिंदी की कुछ अंशों में अयोगात्मकता है तो कुछ अंशों में योगात्मकता। ऐसी स्थिति में प्राधान्येन व्यपदेशा भवन्ति के अनुसार जिस भाषा में जिस पद्धति का प्राधान्य पाया जाता है उसी के अनुरूप उसका नामकरण कर दिया जाता है। चीनी जैसी अयोगात्मक भाषा में कुछ शब्द ऐसे हैं जो केवल संबंध सूचित करने के लिए प्रयुक्त होते हैं। इसलिए चीनी में दो प्रकार के शब्दों की कल्पना की गई है, पूर्ण शब्द जो प्रधान अर्थ देने वाले हैं और रिक्त शब्द जो केवल संबंध सूचित करने वाले हैं। यह विषय भाषाओं के वर्गीकरण के प्रसंग में स्पष्ट किया जा चुका है, प्रस्तुत में भी उपयोगी होने के कारण उसकी चर्चा यहाँ कर दी गई है। पद रचना के लिए निम्नलिखित पद्धतियाँ काम में लाई जाती है। पहला, शब्द को अविकृत छोड़ देना। संस्कृत में नदी, स्त्री, नारी, भूभृत, वणिक, सम्राट, वारि, अस्थि, मधु, अश्रु, लता, आशा, इच्छा आदि शब्द प्रथमा विभक्ति के एक वचन में अविकृत रहते हैं, अर्थात इनके शब्द और पद के रूप में कोई अंतर नहीं है। हिंदी के अनुज्ञावाचक जा, ला, सो, हो आदि शब्द भी अविकृत हैं। केवल धात्वांश सूचक ना हटा देने से ये प्रयोग के योग्य बन जाते हैं। सभी अव्यय इसी वर्ग के अंतर्गत आते हैं क्योंकि उनमें कभी विकार नहीं आता। अव्यय शब्द का अर्थ ही है जिसका व्यय अर्थात परिवर्तन न हो। यही कारण है कि अव्यय सदा एक रूप रहते हैं। जहाँ विभक्ति दिखाई नहीं पड़ती वहाँ संस्कृत के व्याकरण यह नहीं मानते कि विभक्ति नहीं है, बल्कि वे यह मानते हैं कि विभक्ति का लोप हो गया है, अर्थात वहाँ विभक्ति आई और बाद में लुप्त हो गई। जैसा पहले कहा जा चुका है, ऐसा मानने का कारण यही है कि बिना विभक्ति के योग से शब्द का प्रयोग हो ही नहीं सकता, इसलिए वहाँ विभक्ति भी नहीं दिखाई देती और वह भी विभक्ति की कल्पना कर ली जाती है। इस पद्धति को पाश्चात्य भाषा वैज्ञानिकों ने भी महत्वपूर्ण माना है और वे इसको शून्य विभक्ति, जीरो इन्फ्लेक्शन कहते हैं। वैज्ञानिक दृष्टि से विभक्ति लोप की कल्पना पर्याप्त महत्व की है। यहाँ यह भी ध्यान रखना चाहिए कि सभी भाषाओं में पद का एक ही लक्षण घटित नहीं होता। उदाहरणार्थ एस्किमो भाषा में पद और वाक्य के बीच सीमा रेखा खींचना संभव नहीं है, वाक्य की सिमट कर पद बन जाते हैं। अतः पद संबंधी प्रस्तुत विवेचन सामान्य दृष्टि से किया गया समझना चाहिए। दूसरा, शब्द में कुछ जोड़कर पद बनाने की पद्धति बहुत व्यापक है, जैसा आकृति मूलक वर्गीकरण के प्रसंग में हम देख चुके हैं। योग शब्द के आदि, मध्य या अंत में कहीं भी हो सकता है। आदि योग को उपसर्ग, मध्य योग को विकरण और अंत योग को प्रत्यय किया कहा गया है। हिंदी में प्रत्यय के लिए लोग परसर्ग का प्रयोग करते हैं जो अनावश्यक है, इसी तरह मध्य सर्ग भी चल रहा है। ये शब्द अंग्रेजी की प्रीफिक्स, इनफिक्स और सफिक्स के शब्दानुवाद है। उपसर्ग के शब्द के अर्थ में कैसे परिवर्तन होता है यह दिखाया जा चुका है। एक ही शब्द हार शब्द में विभिन्न उपसर्ग जोड़कर प्रहार, संहार, विहार, आहार, परिहार, उपहार आदि शब्द बनते हैं। इसी तरह प्रदेश, संदेश, अनुदेश, निर्देश, विदेश, आदेश, उपदेश आदि। उपसर्ग का योग भारत यूरोपीय परिवार की प्रमुख विशेषता है। अंग्रेजी में भी उपसर्ग योग के पर्याप्त उदाहरण हैं, जैसे प्रेफर, रेफर, डेफर, कन्फर आदि, या रिसीव, परसीव, डिसीव, कंसीव आदि। प्रत्यय के योग से एक ही धातु से निष्पन्न शब्द अर्थ में भिन्न हो जाते हैं, जैसे भक्ति, भजन और भाग। तीनों शब्द भज धातु से निष्पन्न है पर प्रत्यय भेद से इनका अर्थ भेद हो गया है। भक्ति, भजन, भाग, यह तो उपसर्ग या प्रत्यय के योग से शब्द निष्पत्ति की बात हुई। अब पद निष्पत्ति की दृष्टि से भी आदि, मध्य और अंत में होने वाले योग को देखें। आदि योग, अभवत, अपठत, असहत आदि में ओ का प्रयोग भूतकालिक का बोधक है। मध्ययोग, भूवते, पठ्यते, हस्यते में यह भाववाच्य या कर्मवाच्य का बोध कराता है। इसी प्रकार भावयति, पाठयति, हास्यति में अय प्रेरणार्थक है। बुभूषति, पिपीषति, चिकित्सति आदि में श इच्छा का द्योतक है। मध्ययोग के संस्कृत में बहुत सारे उदाहरण मिलते हैं। हिंदी में पढ़ना से पढ़वाना, लिखना से लिखवाना, करना से करवाना आदि प्रेरणार्थक शब्द मध्ययोग से निष्पन्न होते हैं। अंत्ययोग उपर्युक्त उदाहरणों में ही त, ति, ती आदि अंत्ययोग के उदाहरण हैं। संज्ञा सर्वनाम या विशेषणवाचक शब्दों से पद बनाने के लिए विभिव्यक्तियों का योग अंत में ही होता है, जैसे देवम, देवेन, देवाय, देवात, देवस्य आदि। हिंदी में विभिव्यक्तियां शब्द के अंत में ही आती हैं, जैसे देव को देव से, देव के लिए देव से, देव का आदि। तीसरा रचना तत्व का तीसरा रूप है शब्द के अंतर्वर्ती स्वर में परिवर्तन कर देना, जैसे देव से दैव, रुद्र से रौद्र, श्रुति से श्रौत, श्रवण से श्रावण, कुमार से कौमार, बालक से बालिका, पुत्र से पौत्र आदि। क्रियाओं में करना से कराना, पढ़ना से पढ़ाना, हंसना से हंसाना आदि अंतर्वर्ती स्वर परिवर्तन के ही उदाहरण हैं। चौथा अनेकत्र अभ्यास आवृत्ति रचना तत्व का कार्य करता है। संस्कृत में लिट लकार के रूप अभ्यास द्वारा निष्पन्न होते हैं, जैसे पट से पपाठ, नत से ननाद, लिक से लिखे लेख, बुद्ध से बुबोध आदि। अभ्यास का प्रयोग ग्रीक, लातिन आदि भाषाओं में भी पाया जाता है। पांचवा ध्वनिगुण ध्वनिगुण आघात, तान आदि से भी पद रचना में सहायता ली जाती है, जैसे भोजपुरी में देव तुम दोगे, देव मैं दूंगा, करबो तुम करोगे, कौरव मैं करूंगा। इन उदाहरणों में पद का रूप एक रहने पर भी स्वराघात के कारण अर्थभेद हो जाता है। अंग्रेजी में भी संज्ञा और क्रिया का भेदक बलाघात होता है। एक ही शब्द संज्ञा और क्रिया दोनों रूपों में प्रयुक्त हो सकता है। अंतर यही है कि संज्ञा के रूप में उस पर बल पहले अवयव पर पड़ता है और क्रिया के रूप में अंतिम अवयव पर, जैसे कन्फ्लिक्ट, कन्फ्लिक्ट, कंटैक्ट, कंटेक्ट, कन्वर्टर, कन्वर्ट, इम्पोर्ट, इम्पोर्ट, प्रोटेस्ट, प्रोटेस्ट, प्रोजेक्ट, प्रोजेक्ट, ट्रांसफर, ट्रांसफर। छठा आदेश कभी कभी ऐसा देखा जाता है कि मूल शब्द के बदले किसी दूसरे शब्द का प्रयोग हो जाता है और बाद में चलकर उन परस्पर असंबंध रूपों में भी संबंधों की कल्पना कर ली जाती है। आदेश का अर्थ है परिवर्तन। मूल शब्द का सर्वथा परिवर्तन हो जाने से इसे आदेश कहा गया है। उदाहरणार्थ संस्कृत में लट, लिंग, लोट, लंग में दृश धातु का पश्य आदेश हो जाता है। इसलिए इन चारों लकारों में दृश्य के बदले पश्य का ही रूप चलता है, पश्यति, पश्यत, पश्यन्ति आदि। फिर शेष छह लकारों में दृश्य का दृश्य ही रहता है, जैसे लिट में दर्दश। ध्वनि विज्ञानी किसी नियम में दृश्य का पश्य हो जाना संभव नहीं, अतः भाषा वैज्ञानिक दृष्टि से यह मानना पड़ता है कि दृश्य और पश्य दो धातु रहे होंगे जिनमें चार लकारों में दृश्य का प्रयोग विरल हो गया और पश्य का ही चलता रहा। दृश्य के रूप न मिलने से लोगों ने यह मान लिया कि दृश्य का ही पश्य हो गया है। इसी प्रकार अस धातु का लट, लिंग, लोट, लंग में अस रहता है पर लिट आदि लकारों में भू हो जाता है, इसलिए लिट लकार में अस का बभू रूप प्रस्तुत होता है। वस्तुतः अस का बभू नहीं होता, हो भी कैसे सकता है, क्योंकि अस और बभू कोई ध्वनि साम्य नहीं। दृश्य वाली बात ही यहाँ भी हुई होगी। अस के साथ चार ही लकारों में चलते होंगे, इसलिए जब शेष लकारों में उसके रूप का प्रश्न उठा तो भू के प्रयोग में आने लगे। बाद में व्याकरणों ने कह दिया कि अस का भू हो जाता है, तो ऐसा ही कहने के समान हुआ कि आम का अंगूर हो जाता है। हिंदी में जाना का भूतकालिक रूप गया होता है। वस्तुतः जाना और गया में कोई संबंध नहीं है। वर्तमान में जाता है, भविष्य में जाएगा, फिर भूतकाल में गया कैसे हो गया। वस्तुस्थिति यह है कि जाना संस्कृत के या धातु से निकला है और गया गम धातु से। या का जा स्वाभाविक ध्वनि परिवर्तन का उदाहरण है, इसलिए जा से भूतकालिक रूप बनने पर जाया होना चाहिए, जैसे खाना से खाया, पाना से पाया आदि बनते हैं। उसे ढोकर ले जाया गया जैसे वाक्य में जाना का भूतकालिक रूप जाया दिखाई पड़ता भी है, लेकिन वह किसी कारण से संभवतः पत्नीवाचक जाया शब्द के एक रूप होने के कारण समाज को ग्रहित हुआ और समाज ने उसके बदले गम धातु से निष्पन्न होने वाला गया रूप गतो गदो गौ गयो गया बना लिया और तब व्याकरणों ने जाना का ही भूतकाल गया बता दिया। इस प्रकार अंग्रेजी में गो का भूतकाल वेंट होता है जो गो से संबंध नहीं, पद रचना में आदेश का स्थान अनुपेक्षणीय है। पद विभाग, यास्क ने निरुक्त के पद के चार विभाग माने, पहला नाम, दूसरा आख्यात, तीसरा उपसर्ग और चौथा निपात। आज की शब्दावली में इन विभागों का स्पष्टीकरण इस प्रकार है, नाम यानी संज्ञा राम श्याम आदि, आख्यात यानी क्रिया पढ़ना लिखना इत्यादि, उपसर्ग यानी निर्बद्ध अव्यय यानी प्र परा आदि, निपात यानी स्वतंत्र अव्यय इव एव आदि। यास्क के इस विभाग का क्रम महत्वपूर्ण है, नाम और आख्यात अर्थात संज्ञा और क्रिया को उन्होंने अधिक महत्वपूर्ण समझकर एक साथ रखा और उपसर्ग और निपात को कम महत्वपूर्ण समझकर एक साथ। आगे चलकर पाणिनि ने नाम और आख्यात अर्थात सुबंत और तिणंग को ही पद विभाग के रूप में स्वीकार किया। उपसर्ग के संबंध में अपनी तरफ से कुछ न कहकर यास्क ने शाकटायन का मत उद्धृत करते हुए बताया कि नाम और आख्यात से पृथक भूत और उपसर्ग अर्थों का निश्चित बोध नहीं कराते। उपसर्ग को निर्बद्ध अव्यय कहने का कारण यही है कि वह अपने आप में सार्थक और अर्थबोध में समर्थ नहीं है, इसीलिए उत्तरवर्ती व्याकरणों ने उपसर्ग को अर्थ का वाचक नहीं द्योतक यानी प्रकाशक माना है, क्योंकि उपसर्ग संज्ञा या क्रिया के साथ मिलकर सार्थक होता है, इसलिए उसे निर्बद्ध अवयव कहा गया। निर्बद्ध इसलिए कि उसका अलग प्रयोग नहीं होता और अव्यय इसलिए कि उसके रूप में परिवर्तन नहीं होता। उपसर्ग से निपात का अंतर इस दृष्टि से है कि निपात का स्वतंत्र प्रयोग हो सकता है। संस्कृत भाषा के दृष्टि से यह पद विभाग सर्वथा उचित है, हालांकि आगे के व्याकरणों ने इसमें थोड़ा बहुत हेरफेर किया है। हिंदी के व्याकरण में पद विभाग अंग्रेजी व्याकरण के ढर्रे पर किया गया है, इसलिए उसकी संख्या 8 है। बहुत लोगों को यह ज्ञात नहीं कि अंग्रेजी का पद विभाग भी लातिन के से उधार लिया हुआ है। एक भाषा को दूसरी भाषा के ढांचे में ढालने में असंगतियाँ भी होती हैं और कठिनाइयाँ भी, किंतु एक बार जो सिलसिला चल पड़ता है उसे रोकना और बदलना मुश्किल होता है। अंग्रेजी के भाषा वैज्ञानिक लातिन के पद विभाग को अंग्रेजी के लिए अवैज्ञानिक तो बताते हैं, पर अब तक इसका निराकरण नहीं कर पाए हैं। हिंदी व्याकरण के पद विभाग की भी स्थिति वही है। कामतावसाद गुरु ने हिंदी के 8 पद विभाग किए हैं, संज्ञा, सर्वनाम, विशेषण, क्रिया, क्रिया विशेषण, संबंध सूचक, समुच्चय बोधक, विस्मय आदि बोधक। ये 8 भेद अंग्रेजी के रूपांतर हैं। सूक्ष्मता से विचार करने पर इन 8 का अंतर्भाव वस्तुतः 3 में ही हो जाता है, संज्ञा, सर्वनाम और विशेषण। ये 3 संज्ञा के ही रूप भेद हैं। यास्क ने संज्ञा के लिए नाम शब्द का प्रयोग किया है, इसी नाम में सर्व लगाकर सर्वनाम शब्द बना है, अर्थात वह नाम जो सबके लिए प्रयुक्त होता है। मैं, हम आदि सर्वनाम किसी एक व्यक्ति का बोध नहीं कराते, जो भी उनका उपयोग प्रयोग करे उसके भी बोधक हो जाते हैं। मैं भी अपने को मैं कहता हूँ और आप भी। इस प्रकार मैं किसी व्यक्ति विशेष का नाम नहीं बल्कि सर्वनाम है। विशेषण की भी अलग सत्ता नहीं है, क्योंकि उसका उद्देश्य संज्ञा का वैशिष्ट्य बताना है, इसलिए उसकी भी स्थिति संज्ञा से पृथक अकल्पनीय है। संज्ञा के रहने पर विशेषण का प्रयोग हो सकता है, संज्ञा नहीं तो विशेषण की भी नहीं। दूसरी बात यह कि संज्ञा और विशेषण परस्पर परिवर्तनीय है। संज्ञा से विशेषण बन जाता है जैसे धर्म से धार्मिक, नीति से नैतिक आदि, और विशेषण से संज्ञा जैसे सुंदर से सुंदरता, कोमल से कोमलता आदि। एक ही संज्ञा से विशेषण और फिर विशेषण से ही संज्ञा बन जाती है, जैसे मनु से मानव, मानव से मानवीय, मानवीय से मानवीयता। यहाँ संज्ञा, विशेषण और संज्ञा का क्रम दृष्टिगोचर होता है। स्वभावतः विशेषण की सत्ता संज्ञान से अलग नहीं मानी गई। इसलिए पाणिनि ने इन तीनों को एक साथ रखकर सुबंत में डाल दिया। व्यापार प्रधान होने के कारण क्रिया की सत्ता को पृथक स्वीकार करना तार्किक दृष्टि से भी संगत है और व्यवहारिक दृष्टि से भी। शेष चार विभाग क्रिया विशेषण यानी यहाँ वहाँ कहाँ कब जब तब आदि, संबंध सूचक को से के लिए आदि, समुच्चय बोधक और अथवा तथा परंतु इत्यादि, विस्मयादि बोधक छी आह ओ वाह ठीक शाबाश आदि अव्यय ही हैं। इसलिए इन्हें चार अलग विभाग मानने की अपेक्षा एक अव्यय में ही रखना लाघव की दृष्टि से वांछनीय है। वेदोपदेश भेद की बात उठने पर इन चारों में भी अनेक अवान्तर भेद हो जाते हैं, जैसे क्रिया विशेषण में स्थानवाचक, कालवाचक, स्थितिवाचक, अवधिवाचक, परिणामवाचक आदि। यदि पृथक पृथक नामकरण करने लगे तो इस अवान्तर भेदों की भी गणना करनी होगी। इस प्रकार यास्क द्वारा प्रस्तुत विभाग हिंदी के लिए भी अव्यवहारिक नहीं है। अंग्रेजी का विभाग जब अंग्रेजी के लिए ही संगत नहीं है तो हिंदी के लिए वह कहाँ तक स्वीकार्य हो सकता है।